आप लोग जो पिछले द्वार को यहां पर थे, आपको स्मरण होगा कि हमने यहूदा की पत्री को आरंभ किया और हमने यहूदा की पत्री को आरंभ करते हुए केवल हम पहले तीन पद तक कुछ बातों को हमने देखा था और हमने इस बात को देखा, ये नए नियम की एक ऐसी पत्री है जिसमें केवल 25 पद हैं, लेकिन इस पद में, इन पदों में किस प्रकार यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का स्टेप ब्रदर है लेकिन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भाई कहने से लजाता है और किसी प्रकार से वो ये बात को ऐसे गर्व के साथ नहीं करता, लेकिन वो अपना परिचय प्रभु यीशु मसीह का दास करके और याकूब का भाई करके देता है। हमने उसकी पृष्ठभूमि को देखा था, ये यहूदा कौन है, कब इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और किस रीति से ये पत्री लिख रहा है। और आज जो सुबह दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय 1 से लेकर 22 तक पढ़ा गया, वो अध्याय और यहूदा की पत्री का ये अध्याय बिल्कुल एक ही चीज है। सिर्फ फर्क इतना है कि पत्रस अपने उस पत्री में लिखते हुए कह रहा है कि विश्वासियों सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे मध्य में ऐसे लोग आ खड़े होंगे। पर यहूदा कहता है विश्वासियों तुम सावधान रहो कि क्योंकि तुम्हारे मध्य में ये लोग हैं। जो वर्णन पत्रस में है वही वर्णन यहां है। और पिछले इतवार को जब हमने देखा था तो हमने प्रोत्साहन के बारे में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सुरक्षित हैं और इसलिए हमें अपने उस विश्वास की, अपने उस उद्धार की रक्षा करनी है। और हमने उस विषय को भी देखा था जो यहूदा की पत्री का है कि हमें अपने विश्वास और उद्धार के लिए संघर्ष करना है, प्रत करना है और उसकी सुरक्षा करना है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 4 से लेकर 16 तक हम देखेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और तब उसके बाद हम आज जो देखना चाहते हैं वो चेतावनी है, और चेतावनी हमें हमेशा सावधान करती है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मसूरी गए हैं। अगर आप मसूरी जाते हैं तो जैसे ही देहरादून को पार करके अब मसूरी की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी शुरू हो जाती हैं, आप वहां पर हमेशा एक बात को देखेंगे, पहाड़ पे, कई जगह पे, पहाड़ पर, बोर्ड पर, या पहाड़ पे भी या बोर्ड पर भी एक लिखा हुआ है, ए से 3 शब्द लिखे हुए हैं। ए से 3 शब्द हैं, अलर्ट, अवॉइड, एक्सीडेंट। अलर्ट, अवॉइड, एक्सीडेंट, ये चेतावनी के रूप में ये 3 शब्द हैं। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और कई बार जो नीचे से लोग जाते हैं जो अच्छी रीति से ड्राइविंग नहीं जानते वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं जहां पर लिखा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये सारी चीज हम रोज पढ़ते चले जाते हैं और परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको अलर्ट करता है, सावधान करता है। और इसलिए न केवल परमेश्वर का वचन मुझे प्रोत्साहित करता है, लेकिन प्रोत्साहन के साथ साथ मुझे और आपको इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते हुए सावधान भी करना चाहता है, और विश्वासियों को बहुत ही अधिक सावधान होना है। सो जब हम यहूदा की पत्री के दूसरे भाग में जाते हैं, आज का वो विषय है वो मुझे और आपको सावधान करने के लिए है। क्या सावधानी है? आइए हम 4 को पढ़ेंगे। 4 में इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि पहले 3 में परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपने में सुरक्षित रखा है, और इसलिए हमें अपने विश्वास की सावधानी से सुरक्षा करनी है, यत्न से सुरक्षा करनी है, जो 3 में है। और वो कह रहा है यत्नपूर्वक संगत करते रहो। तब वो 4 जैसे स्टार्ट करता है, शुरू करता है, आरंभ करता है, क्योंकि इससे पहले क्या चुका है, तुम बुलाए गए हो, तुम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हो, तुम्हें यत्न से संघर्ष करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सारी बातें हैं, क्योंकि ये सारी बातें हैं। अब वो आगे कुछ बातों को बताना चाह रहा है, क्यों मुझे और आपको अपने विश्वास की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए संघर्ष करना है।
क्यों मुझे और आपको अपने विश्वास को थामे के लिए सावधान रहना है, क्यों मुझे और आपको अपने विश्वास को संभालने के लिए असावधानी से आगे बढ़ना है। तब वो कहता है चौथे पद में, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे हैं जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है और कलीसिया स्थानीय कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह स्थानीय कलीसिया को नहीं लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उस विश्वव्यापी कलीसिया में स्थानीय कलीसिया में के लोग भी शामिल हैं। स्थानीय कलीसिया में मिली जुली भीड़ रहती है, उसमें विश्वासी भी हैं, अविश्वासी में पूरी हर एक जगह कोई भी कलीसिया में जाएंगे, कुछ ने विश्वास किया है, कुछ ने विश्वास नहीं किया है, कुछ आ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ परख रहे हैं, कुछ आगे आके धीरे पीछे हो जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि रोगी हो गए, निर्बल हो गए, सो गए, कलीसिया में हैं लेकिन सो गए हैं, अर्थात उनका विवेक मर गया है। सो ऐसे लोग भी हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो विश्वव्यापी कलीसिया को ले जाएंगे और विश्वव्यापी कलीसिया के हम और आप जो सचेत और जागृत होकर के हैं वो उसके उसके भागी हैं या उसके सदस्य हैं या उसके अंग हैं। लेकिन वो यह सावधान कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कलीसिया में आ चुके हैं, आ घुस गए हैं। और मेरे प्रियो, उस समय से एक और सुसमाचार बढ़ रहा था, एक और कलीसिया की स्थापना हो रही थी और सुसमाचार फैलता चला जा रहा था, लेकिन उसी समय से हम देखते हैं कि कलीसिया में झूठे शिक्षक आ खड़े हुए थे। अभी हमने पिछले दिनों में पास्टर्स के साथ और लोगों के साथ प्रेरित काम की पुस्तक का अध्ययन करा और हम देख रहे थे 15 अध्याय में, प्रेरित काम के 15 अध्याय में एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर आ गई थी कि जो लोग अन्य जाति परिवार से आ रहे हैं उनका खतना होना जरूरी है। ये लोग कह रहे थे, यहूदीवाद था, लेकिन वहां पर सारे ये जो अगुए हैं, प्रेरित और प्राचीन इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ी सभा होती है और वहां पर निर्णय ले आता है, नहीं ये अनुचित है, हमें ऐसा नहीं करना। सो वहां पर भी उसी समय से कई सारे ऐसी शिक्षाएं बढ़ती चली जा रही थी और धीरे 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 झूठे शिक्षक बढ़ते चले गए और आज भी बहुत सारे झूठे शिक्षकों को हम देखते हैं। जीसस ओनली, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस, बहुत तरह से बहुत सारे ऐसे हैं, यहां तक कि जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को प्रीच करते हैं, पावर इमेजिज्म, कहते हैं पावर इमेजिज्म। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं, अगर मैं एक के बाद आपको बताने लगूं, आपके साथ शेयर कर लूं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जहां परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। सो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए आज हमें सावधान रहना है और इसलिए हाँ, ये बहुत जरूरी है कि पत्रस की जो पत्री में हमने पढ़ा था या यहूदा में जो हमने पढ़ा है, इससे हम साधन और सीख सकें। वो कह रहा है ये घुस चुके हैं, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है क्या करते हुए अधर्मी जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन के में बदल डालते और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात मसीह को अस्वीकार करते हैं। किसी ना किसी से, किसी रीति से जो परमेश्वर की प्रभु सत्ता है, उसका सर्व अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं वो लोग कम कर देते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आप जो सियोन कलीसिया में आते हैं, आप जानते हैं, आपको शायद ये देखने लगता होगा कि हम क्यों परमेश्वर के वचन में ज्यादा जोर देके अधिक समय देते हैं, आराधना गीत गाते हैं कई सारी जगह में। लोग कहते हैं अरे यहाँ आराधना ज्यादा होनी चाहिए, 1 घंटे आराधना होनी चाहिए, 10 मिनट का संदेश दिया और खत्म हो गया। लेकिन वचन हमारे जरूरी है, आराधना जरूरी है तो वचन भी जरूरी है ना। आप रोटी खाते हैं तो उसके साथ सब्जी भी जरूरी होती है, अगर उसके साथ सब्जी खाते तो उसके लिए पानी भी जरूरी होता है, एक पूरा आहार जरूरी है शरीर की देह को बनाने के लिए। ठीक तरीके से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए केवल एक पार्ट जरूरी नहीं है, संपूर्ण रीति से हमें सब कुछ चाहिए और उसमें वचन भी है और इसीलिए हम अपनी कलीसिया में वचन को प्राथमिकता देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़े तो क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के अधिकार को कम कर रहे हैं। अब इस बात को ध्यान में देना, तब वो 5 पद से लेकर 7 पद तक पुराने नियम की 3 घटनाओं को स्मरण दिलाता है, पुराने नियम की 3 घटनाओं को स्मरण दिलाता है। और उनको स्मरण दिलाते हुए वो कहता है प्रभु ने मिस्र में, फिर दूसरी घटना स्वर्गदूतों के बारे में, और तीसरी घटना सदोम अमोरा के बारे में। समय नहीं है कि मैं विस्तार से आऊं, लेकिन मैं जरूर थोड़ा रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप जाके घर में इसको पढ़ें। मिस्र, जब हम मिस्र के बारे में देखते हैं उत्पत्ति में, हम मिस्र का वर्णन पाते हैं। और मिस्र में परमेश्वर ने अब्राम को उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में मिस्र से बुलाया और उसको कहा कनान में जाने के लिए। ठीक है, वो कनान में गया और कनान में बस गया, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो याकूब का जो बेटा यूसुफ था वो बाद में मिस्र में चला गया। कैसे मिस्र में चला गया हम जानते हैं, किस रीति से वो पोती पर ने उसको खरीदा, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ा। और जब वो मिस्र में जा गया तो मिस्र में धीरे धीरे करके परमेश्वर ने उसको एक ऊंचा पद दे दिया। अब कनान में अकाल पड़ा, कनान में अकाल पड़ा, जब अकाल पड़ा तो अब ये याकूब लोग भूखे होने लगे, लेकिन यूसुफ बुद्धिमान था और उसने 7 साल के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया था कि अनाज की घटी ना होने पाए। और तब इनको कनान से, याकूब के बेटों को कनान से मिस्र में यूसुफ के पास जाकर राशन या भोजन लेना पड़ा। और हम धीरे धीरे देखते हैं क्या हुआ, जब यूसुफ ने पहचान लिया ये मेरे भाई हैं, तो उसने यूसुफ ने अपने भाइयों को बुलाया, अपने पिता को बुलाया, अब ये सब यूसुफ के साथ मिस्र में रहने लगे। और तब हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे इसराइलियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन ये मिस्र की गुलामी में आ गए, मिस्र के अधिकार में आ गए। और मिस्र में अधिकार में रहकर अब फिरौन जो मिस्र का शासक था, फिरौन एक पदवी है, जिस तरह से यहां गवर्नर पदवी है उस तरह से फिरौन पदवी है। लोग बदलते गए लेकिन उनको फिरौन 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 कहा गया। नए नियम में भी हम इसको दूसरी रीति से दूसरी पदवी को देखते हैं। सो फिरौन शासक था, उसके अधिकार में अब ये थे। और तब जब ये इसराइल लोग लगभग, यदि परमेश्वर ने पहले ही अब्राम से कह दिया था कि अब्राम मैं तुझको और तेरे वंशज को मिस्र में पहुंचाऊंगा और 430 साल वो गुलामी में रहेंगे और तब मैं उनका छुटकारा करूंगा, केवल कहानी के रूप में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। तब उसके बाद अब यहां पर क्या होता है, जब ये गुलामी में बहुत अधिक दब गए, बहुत दब गए, तो ये इसराइली लोग रोने लगे। और जब रो रहे थे परमेश्वर ने इनकी विनती सुनी, मूसा को खड़ा किया और मूसा को खड़ा करके उनको एक अगुआ दिया, और अब मूसा ने उनको मिस्र से उनका छुटकारा किया। अब ये निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं किस प्रकार से वो छुटकारे में होकर अब मूसा उनको आगे ले जा रहा है। मूसा पुराने नियम में वो अगुआ है जो मिस्र की बंधुआई से छुड़ा रहा है, परमेश्वर की सहायता कर रहा है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये याद दिला रहा है कौन, यहूदा कलीसिया के लोगों याद दिला रहा है कि देखो सुन लो, यद्यपि तुम सब बातों को पहले ही से जानते, तुम जानते हो कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाने के पश्चात उनको जिन्होंने विश्वास नहीं किया किस प्रकार नाश कर दिया। अब इन्होंने मिस्र से उनको छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, जब बाइबल में हम देखते हैं जब मिस्र से छुड़ा लिया तो परमेश्वर ने उनसे एक बात कही थी, मिस्र संसार को प्रदर्शित करता है, मिस्र शैतान के शासन या अधिकार को प्रदर्शित करता है, मिस्र जो है पाप के गुलामी को प्रदर्शित करता है, गुलामी को बंधुआई को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको वहां से छुड़ाया। और तब जब निर्गमन में आए परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मिस्र को मत जाना, तुम मिस्र को मत जाना, अर्थात तुम उस संसार में लौटकर मत जाना, ये चेतावनी दी थी। व्यवस्था विवरण 16:17 उसमें साफ कहा था राजाओं के बारे में, जो राजा बनेंगे वो मिस्र में किसी रीति से मिस्र में नहीं जाएंगे। और कारण ये था कि मिस्र के घोड़े बहुत बलवान थे, मिस्र के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे, तुम मिस्र में घोड़े लेने ना जाना। सुलेमान ने यही पाप किया था, सुलेमान ने यही बाद में पाप किया था। यशाया में, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है। क्या मतलब है? अगर तुमको मिस्र से छुड़ा लिया गया, संसार से छुड़ा लिया गया, बंधन से छुड़ा लिया गया, उस पाप से छुड़ा लिया गया, उस पुराने संसार से तुम्हें छुड़ा लिया, तो तुम वापस उसमें मत जाना। और मेरे प्रियो, ये आज मेरे और आपके लिए विश्वासियों के लिए चेतावनी है। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, जब आपको परमेश्वर ने अगर संसार से छुड़ा लिया है, मिस्र से छुड़ा लिया है, अगर आप बचा लिए गए हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चेतावनी देता है, परिस्थितियां विभिन्न हो सकती हैं, परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं, कठिनाई हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके लिए ये टेस्ट है, क्या हम पुनः मिस्र में जाते हैं, क्या पुनः हम संसार में आते हैं, क्या पुनः दूसरी रीत जाते हैं। हम अगर वहां से छुड़ा लिए गए, हमें वापस मान जाना। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो मिस्र को पाने। और मेरे प्रियो, ये मिस्र थी, मिस्र की स्थिति ये थी कि मिस्र ऐसा जगह था जिन्होंने पाप किया, अनज्ञाकारिता किया और अविश्वास किया। अब एक विश्वासी को पाप से बचकर जीवन व्यतीत करना है, एक विश्वासी को अनज्ञाकारिता से बच के जीवन व्यतीत करना है, एक विश्वासी को अविश्वास से बचकर जीवन व्यतीत करना है। लेकिन ये झूठे शिक्षकों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी हम आगे और कुछ देखेंगे, पर सावधान रहिए, सावधान, अलर्ट। सो यहूदा की पुस्तक मुझे और आपको सावधान करती है। हम कई बार ऐसे ही करते हैं। आप अपने जीवन में विचार कीजिए, कौन सा समय था जब आपने अपनी कठिनाइयों में, अपनी परिस्थिति में, अपने समय में, आप दौड़कर मिस्र में चले गए, आपने मिस्र से समझौता किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर। मुझे और आपको सचेत होना है, यदि हमने प्रभु को पाया है तो हमें मिस्र में वापस नहीं जाना। यह मिस्र की स्थिति थी। दूसरी बात हम देखना चाहेंगे, तब छठे पद में, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़ कर उस भीषण दिन की न्याय के लिए अंधकार में रख दिया। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय में जो पढ़ा, उसमें उन स्वर्गदूतों के बारे में वर्णन है। ये स्वर्गदूत कौन थे? जब हम कई सारी बातें पाते हैं, तो बहुत सारे बाइबल के विद्वानों का ये मत है, जो उत्पत्ति उसके छठे अध्याय में लिखा हुआ है, कि परमेश्वर के जनों ने या परमेश्वर से जो थे उन्होंने संसार या संसार की युवतियों से विवाह करा। और ये कहा जाता है, दो चीज इसमें है, उसमें कई सारे ऐसे स्वर्गदूत हुए जिन्होंने एक नैतिक अपराध किया। स्वर्गदूत, स्वर्गदूत अगर आप देखें, बेस्ट क्रिएशन, सबसे उत्तम सृष्टि है, बेस्ट पोजीशन, सबसे उत्तम उनके पास पद है, बेस्ट सर्विस, सबसे उत्तम उनकी सेवा है। स्वर्गदूत, बेस्ट क्रिएशन, मनुष्य से पहले उनकी रचना की गई, उनको क्रिएट किया गया, उनको बनाया गया और विशेष अभिप्राय से बनाया गया। लेकिन इन स्वर्गदूतों ने भी पाप किया, पर परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया। दूसरे पत्रस में आप पढ़ सकते हैं दोबारा, दंड दिया। सो पहला चेतावनी मिस के बारे में है, दूसरा चेतावनी स्वर्गदूतों के बारे में, और सबसे बड़ा जो सूत्र चेतावनी है स्वर्गदूत के बारे में, उसके अंदर घमंड आ गया। मनुष्य का घमंड सबसे बड़ा पाप है और वो उसको गिरा देता है, वो उसका। और कई बार हम समझते नहीं, चाहे वो हमारे ज्ञान का घमंड हो, चाहे वो हमारे पद का घमंड हो, चाहे वो हमारे धन का घमंड हो, चाहे हमारी किसी और चीज का घमंड हो, चाहे हमारी परिस्थिति बैकग्राउंड का घमंड हो, ओ मेरे पापा के पास 100 बीघे पुदीने का खेत है। हम फालतू के पुरानी चीजों को लेके बहुत घमंड करते हैं। हमें सावधान रहना है किसी भी चीज के लिए। मेरे प्रियो, इसीलिए मुझे और आपको प्रार्थना करना, सिर्फ मैं कल भाइयों को बोल रहा था, माफ कीजिएगा, कि जब हम घुटनों के बल आते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो स्थिति एक अच्छी होती है। और हमें दीन होना सीखना है, हमें झुकना सीखना है, हमें झुकना सीखना है परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने घमंड किया, इसलिए ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। आप जानते हैं यशायाह उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं, इज़ेकेल में पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, सदोम अमेरा। सोचिए अब्राहम ने सदोम अमेरा के लिए कितनी परमेश्वर से प्रार्थना की, ओ प्रभु अगर 100 जानो, अरे प्रभु 90 जानो, अरे प्रभु 50 जानो, अरे प्रभु करते 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 वो 10 जन पर आ गया कि अगर 10 जन भी इसमें धर्मी मिले तो क्या तू इसको बचा लेगा। अब्राहम कितनी प्रार्थना कर रहा परमेश्वर, सदोम अमोरा में कोई भी तो धर्मी मिल जाए, लेकिन वहां एक भी धर्मी नहीं मिला। और तब क्या हुआ, फिर भी लूत वहां था धर्मी और परमेश्वर लूत को बचाना चाहता था, और परमेश्वर ने लूत से कहा कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तुझ भेजता हूं और तू वो स्वर्गदूत सहायता करेंगे ताकि तू सदोम अमोरा को छोड़कर निकल जा। और लूत की पत्नी को कहा तू पीछे मुड़कर मत देखना, अगर पीछे मुड़कर देखेगी तू नमक का खंभा बन जाएगी। और तब स्वर्गदूत हाथ पकड़ के इनको लेकर जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, भयंकर आग लगी हुई है, सदोम अमोरा का विनाश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर परमेश्वर अपनी करुणा में अपने दया में इनको बचा रहा है और इनको बचा करके इनके हाथ को लेकर जा रहा है। निकले ये आगे बढ़े, लेकिन इस लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया। क्यों, क्या कारण था, वो सदोम अमोरा से तो निकल गई थी लेकिन सदोम अमोरा उसके हृदय से नहीं निकला था। वो सदोम अमोरा से तो बाहर आ गई थी लेकिन उसके हृदय से सदोम अमोरा नहीं गया। मेरे प्रियो, हम संसार से बाहर होने का दावत करते हैं लेकिन संसार हमारे हृदय में बसा रहता है। पुरानी रीतियां, पुरानी विधियां, पुरानी इच्छाएं, पुरानी चीजें, पुराने तरीके, वो सारे हमारे हृदय में बसे रहते हैं। हम विश्वासी तो कहते हैं, प्रभु के पीछे चलने का दावा तो करते हैं, लेकिन फिर भी सदोम अमोरा हमारे हृदय से नहीं निकलता। और इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि सदोम अमोरा हमारे हृदय से निकल जाए और उस हृदय में प्रभु का वास हो जाए, प्रभु का वास हो जाए। और मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं वो तीन चीजों कह रहा है, जिस रीति से सदोम अमोरा और उनके आसपास के नगर इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराय शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी ना बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़ गए, उदाहरण स्वरूप ठहरे। सदोम अमोरा एक उदाहरण है। ये तीन उदाहरण परमेश्वर ने अपने वचन में दिए झूठे शिक्षकों के लिए। इनका ध्यान, इनका मन, इनकी इच्छाएं, इनकी चाहना, इनकी सब कुछ संसार 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 रहता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सचेत होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? रोटी कपड़ा मकान जरूर हम के लिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु देने तैयार है। नौकरी जरूर प्रार्थना करना चाहिए हमें, प्रार्थना, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु हम आपकी धार्मिकता में जी सकें, प्रभु आपकी पवित्रता में मेरे जीवन में आ सके, प्रभु आप अपने स्वभाव में मुझे बदलें, मेरे अंदर से जो घमंड है, क्रोध है, उसको निकालें। मैं जब प्रभु में आया था 72 में, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं अपने दिनों को याद करता हूं, मेरा बहुत बुरा स्वभाव था। आज भी मैं याद करता हूं तो मुझे अपने पर शर्म आती है। जो काम मैंने किए उनके लिए मैं उस समय बहुत घमंड करता था, बहुत घमंड करता था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैंने अपने कलीसिया में बेतल में रो रो के, प्रेयर मीटिंग होती थी थर्सडे को, रो रो के मैंने शेयर किया, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा स्वभाव, मेरी इच्छाएं, मेरा ये चीज बदल जाए, क्रोध बदल जाए, मेरा जो भावना लड़ने वाली भावना था वो बदल जाए। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरी ग्रोथ या बढ़ोतरी इस तरह से हुई थी कि मैं किसी के उस प्रकार के अनुशासन में नहीं रहता। लेकिन प्रभु से मैंने इतना मांगा, आज भी मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सारी चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए, मुझे धन और ये वैभव सब कभी हमारे अंदर इच्छा नहीं रही, प्रभु ने बचाया, शुरू से बचाया, ना मेरे ना प्रेम मेरी पत्नी के जिम्मे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, उसने कभी भी एक साड़ी तक के लिए चाहना नहीं कि आप मुझे ये लाके दीजिए, कभी इस चीज के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या मांगते हैं, क्या हम मांगते हैं, क्या हम ये मांगते हैं, प्रभु मुझे अपने स्वरूप में ढाल लीजिए, प्रभु मुझे सदोम अमोरा से अलग कर दीजिए, प्रभु मुझे मिस्र से हटा दीजिए, प्रभु मेरे मिस्र की ओर ना देखने पाऊं, प्रभु मैं घमंड, वो सब दूता हूं घमंड में रखना ना आने पाए, अलर्ट सावधान, चेतावनी है ये वार्निंग है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में इन लोगों को देखकर सावधान रहना है, उनको पहचानना है, लेकिन अपने आप भी सावधान रहना है, कहीं ऐसा तो ना हो कि वो अवगुण, वो वैसे चरित्र मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा हूं, मैं कलीसिया में तो हूं लेकिन मैं झूठे शिक्षक और झूठे सेवक और झूठे प्रचारक के समान हो रहा हूं। मुझे सावधान होना है, आपको सावधान होना है। मैं बाइबल तो सिखा रहा हूं, प्रचार तो कर रहा हूं, मीटिंग तो ले रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर ये सारी चीज बढ़ती चली जा रही है, मुझे और आपको सावधान होना। मेरे प्रियो, जो कलीसिया में सेवा करते हैं, वचन की सेवा करते हैं, मुझे और आपको, मुझे और अधिक सावधान होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन की सेवा करता है उसे सावधान होना है, क्योंकि उसको और अधिक परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। और हम डरते हैं, कांपते हैं परमेश्वर सामने, क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। आगे चलकर तब वो क्या कह रहा है, चौथे पद में इस बात को कहकर पांच से तीन बातों कहता है, ग्यारह पद में फिर से तीन उदाहरण वो देता है, बीच में हम छोड़ के वापिस आएंगे, ग्यारह पद में फिर से तीन उदाहरण देता है। वो कौन से उदाहरण, उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया है और मजदूरी के लिए बिना विचारे विलाम की सी भूल कर बैठे हैं और कोरा के समान विद्रोह करके नाश हो गए हैं। ये तीनों का नाम नए नियम में तीन बार आया है, तो इन तीनों उदाहरण, एक बार यहूदा में है और दो अलग अलग स्थलों में, तीन बार देना, प्रकाश वाक्य में, इब्रानियों में, सब अलग, लेकिन तीनों बार, समय नहीं कि मैं उधर ले जाऊं आपको, पर आप घर में जाके स्टडी करिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन तीनों का, और तीनों बार इनके लिए दुख के साथ इनके अवगुण दिए गए हैं। कैन, पहली बात वो कहता है, कैन, आप कैन के बारे में जानते हैं, जिसने अपने भाई का की हत्या की, जिसने अपने भाई की हत्या करी, किस प्रकार से उत्पत्ति के चार अध्याय में उसके जीवन के बारे में पाते हैं, किस तरीके जलन, जलन जो है, डा जो है, बहुत भयंकर जड़ है, आपको मालूम है, इसीलिए इब्रानियों उसके 14 पद में कहता है सबसे मेल मिलाप रखते हैं और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा, और तब 15 पद में कहता है कि कोई कड़वी जल तुम्हारे अंदर से फूट करके ना निकले और ऐसाओ के समान ना बनो। वो ऐसाओ का अंदर जड़ें कई प्रकार से होती है, कुछ जड़ बाहर से दिखाई दे जाती है लेकिन कुछ जड़ें जो जमीन के अंदर रहती हैं और अंदर ही फैलती चली जाती हैं। कई बार मनुष्य के स्वभाव में जलन की जड़ ऐसी होती है जो अंदर फैलती चली जाती है, अंदर फैलती चली जाती है, भयंकर है। ये था इसके सामने, और इसने जलन के कारण अपने भाई की हत्या कर दी, हत्यारा हो गया। जब परमेश्वर से पूछा, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है, तो उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, क्या अपने भाई का रखवाला हूं। न केवल उसके अंदर जलन उत्पन्न हुई, न केवल उसने हत्या करी, लेकिन अब अपने भाई का भी स्वार्थी हो गया, मुझे अपने भाई से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने भाई से कोई मतलब नहीं। नहीं मेरे प्रियो, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमें सावधान होना है। किस रीति से, तो परमेश्वर के कैन के बारे में, और आपको होना चाहिए कि कैन का नाम या वंशज वो इसी के बाद से खत्म हो गया। परमेश्वर ने उसको बहुत भयंकर दंड दिया, लेकिन कैन के समान ये झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, इनके अंदर जो स्वभावतः जड़ें छुपी होती हैं, जड़ें छुपी होती हैं, मेरे और आपके साथ तो आते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अंदर कुछ और हो करके चलते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को, मैंने शायद पहले बताया, बाराबंकी में गए, एक भाई मेरे साथ था और वो बाहर गया और एक भाई को ले आया, वो जो सड़क पे खड़ा होकर बाराबंकी में प्रचार कर रहा था, मेरे साथ आगे मैंने बैठाया घर में, मैंने बहुत अच्छी बात है, एक भाई साउथ से आया था प्रचार कर रहा था, मैंने बहुत अच्छी बात है, मैंने पूछा आप किस चर्च से हैं, कह मैं किसी चर्च से नहीं। खैर बात करते करते मैंने कई बात पूछी, लेकिन बाद में हुआ कि वो ना चर्च को मानता है, ना चर्च के बारे में कुछ जानता है, ना चर्च से कोई संबंध रखना चाहता है, वो नहीं कुछ। मैंने कहा अगर आप चर्च को नहीं मानते हैं तो आप मेरे घर यहां से उठिए और बाहर निकल जाइए, आप बाइबल को नहीं मानते, अगर चर्च को नहीं मानने, आप बाइबल को नहीं माने, किसी को ही तो चर्च के होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चर्च कुछ नहीं, अगर चर्च कुछ नहीं है तो आप झूठे शिक्षक हैं, झूठे प्रचारक हैं, झूठे सेवक हैं, मेरे घर से बाहर निकल जाइए। मैंने कई लोगों के साथ किया, और बाराबंकी में जब था भाइयों, मैंने अपने कलीसिया के लोगों को बोल दिया था कि अगर कोई भी आपके पास आता है एक सेवक के रूप में बढ़ते हुए, और अगर आप उसको पहचान नहीं पाते, आप पहले हमारे पास भेज दीजिए, हमें उसे मिलने दीजिए, अगर उसकी सहायता करनी हो तो हम सहायता करेंगे, लेकिन आप धोखे में मत पड़िएगा। मैंने अपनी कलीसिया संभाला उस तरह से संभाला। और मेरे प्रिय, हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बाराबंकी को कलीसिया ने स्थिर किया। क्यों? हमने सीखा और सिखाया। और मेरे प्रिय, मुझे और आपको, ये झूठे शिक्षक मुझे अपने आप, मेरे को सावधान करते हैं ये शिक्षा, कि मैं इससे सावधान रहूं, इसके साथ साथ दूसरों को भी पहचान सकूं कि दूसरे लोग कैसे हमारे घर में आते हैं, हमारी कलीसिया में आते हैं, हमारे साथ आते हैं। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं कलीसिया, लेकिन हमें सावधान रहना है। विलाम बहुत अच्छा सेवक था, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको कहा कि तू उनको, इसराइलियों को शाप मत देना। गिनती अगर 22 अध्याय से पढ़ेंगे, 22 23 24 तो आपको मिलेगा विलाम, तू सब। लेकिन परमेश्वर मना कर रहा है, विलाम बार बार क्या कर रहा है? वेदी बना रहा है। अच्छा, मैं पूछूंगा, अरे जब परमेश्वर ने मना कर दिया तो क्यों पूछ रहा परमेश्वर से? लेकिन फिर भी बार बार बालाक से कह रहा है, ठीक है, राजा बालाक से कह रहा है, ठीक है, मैं परमेश्वर से पूछ के बताऊं। पहली बार परमेश्वर ने मना करा, दूसरी बार मना करा, यहां तक कि गदी चिल्ला उठी, गदी चिल्ला उठी, गदी बोल रही है, ओ तुझे वहां नहीं जाना है। लेकिन वो नहीं समझा, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में लालच बसा था। बालाक ने कहा था, अगर तू इनको शाप देगा तो मुझे, मैं तुझे बहुत सारी संपत्ति दूंगा, तुझे ये दूंगा, जेवर दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये सब कुछ दूंगा। तो घूम फिर के उसका ध्यान उसी चीज के लिए आ रहा था। और आज भी हम प्रभु को पाने के बाद कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं संसार में चले आते हैं या समझौता करते हो, तब बाद में समझौता इसने किया। और आपको मालूम है, ये बाद में झूठा भविष्य तक हिलाया। इसको नया प्रकाश वाक्य में इसके लिए लिखा है, वो झूठा भविष्य तक कहलाया। क्या प्रभु का सेवक था, प्रभु से बात करता था, प्रभु के साथ चलता था, प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था, प्रभु ने उसको चुना था, लेकिन फिर भी धन के लालच में होकर वो समझौता कर रहा है, और परमेश्वर के लिए स्पष्ट होकर नहीं खड़ा हो रहा है, परमेश्वर के लिए स्पष्ट होकर नहीं खड़ा हो रहा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु के लिए स्पष्ट होकर खड़े होइए। मेरे जीवन में, मैं मनुष्य हूं, गलतियां करी हैं, आज भी चूकता हूं, लेकिन फिर प्रभु ने बहुत सारे ऐसे दिए और मुझे अनुभव दिए। मैं परमेश्वर धन्यवाद हूं जो अनुभव प्रभु ने मुझे दिए। एचएल में रहते हुए बहुत सारा ऐसा समय आया जहां मुझे अपने अधिकारियों के सामने खड़ा होना पड़ा और मुझे कहना पड़ा, सॉरी सर, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं मसीह हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे कहना पड़ा, परमेश्वर ने सहायता की और परमेश्वर ने उनको दिखाया भी, परमेश्वर मेरे साथ है। कई सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मेरे प्रियो, मैं और आप इस संसार में हैं, मैं और आप इस संसार में हैं, मुझे और आपको इस संसार में चलना पड़ता है। लेकिन हम कैसे संसार में चलते हैं? हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं। हम संसार से भाग नहीं जा सकते। ओ वहां मैं नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि नौकरी करूंगा तो वहां गड़बड़ा है, ये है, था चीज नहीं, मैं करूंगा लेकिन उनके समान नहीं रहूंगा, पर मुझे अपने जीवन को बना के रखना है। मैं संसार में हूं लेकिन संसार का नहीं। मैं कॉलेज जाऊंगा, पढ़ूंगा, उन विद्यार्थियों के बीच में रहूंगा, उन विद्यार्थियों के बीच में रहूंगी, लेकिन अपने जीवन को अलग बना के रखूंगा, अलग बना के रखूंगी, क्योंकि मैं संसार में हूं लेकिन संसार का नहीं। और बार 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 ये विलाम, क्योंकि डबल माइंडेड था। कल मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था और ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, उनसे कहा, डबल माइंडेड, हम डबल माइंडेड होकर, दोहरा चित होकर के मसीह को प्रश्न नहीं कसते। ये झूठे शिक्षक का गुण है, अवगुण है। और कई बार ये विश्वासी मुझ में और आप में भी आते। तीसरी चीज जल्दी से कह रहा है, कोहरा। आप कोहरा गिनती 16 अध्याय में जाइए तो वहां पर आपको मिलेगा, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में। वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ कोहरा में? क्या मूसा ही अगुआ है। क्या परमेश्वर मूसा ही से बात करता है? मूसा को परमेश्वर ने चुना है और मूसा को चुनकर परमेश्वर आगे ले जा रहा है। लेकिन ये कोरह वंशी विरोध में आ गए। परमेश्वर हमसे क्या, हमसे भी परमेश्वर बात करता है? और उन्होंने अगुओं का विरोध किया, विद्रोह किया, मूसा से विद्रोह किया। मूसा रोया, परमेश्वर के पास गया, घुटने टेके परमेश्वर से कहा, देख परमेश्वर पिता, तूने मुझे सेवा दी है, तूने मुझे यह अगुआ बनाया है कि मैं इनको ले जाऊं। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा, मूसा तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, तू इन सबको बाहर बुला और मैं आज इनको प्रकट करूंगा कि मैंने तुझे चुना है। और मेरे पे जब ये सब बाहर इकट्ठा हुए और परमेश्वर ने भूमि फाड़ी, कोरह वंश को वहां दफना दिया। क्यों? क्योंकि सब कोरह वंश देख रहे थे किस प्रकार मूसा उनकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेकर चल रहा है और कैसे उनकी सहायता कर रहा है। भूखे हैं तो मन्ना दे रहा है, प्यासे हैं तो जल दे रहा है, दिन में बादल का खंभा दे रहा है, रात्रि में अग्नि का ज्वाला दे रहा है, हर एक तरह से उनकी रक्षा कर रहा है, पौनाई कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बार बार कुड़कुड़ा रहे हैं, बार बार विद्रोह कर रहे हैं, बार बार परमेश्वर के अगुए के विरोध में कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर, मूसा तू परेशान ना। और मेरे प्रियो, ये सच है, मूसा के जीवन से हम प्रभु के चरणों में रहना सीखते हैं। जितनी बार मूसा साथ वो निर्बल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमेशा दौड़कर परमेश्वर के पास जाता था, हमेशा दौड़कर। और इसीलिए परमेश्वर मूसा से बहुत प्यार करता था। 7 बार अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन में, 7 बार परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाकर के अकेले में बातचीत की, 7 टाइम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था। कोरह वंशी विद्रोही बन गए। ये रूप है इन कलीसिया के ऐसे झूठे शिक्षकों का, जो विद्रोही बन जाते, शिक्षाओं का विद्रोह है। सही शिक्षा को नहीं मानते, सही अगुओं को नहीं स्वीकार करते, अगुओं के विद्रोह करते हैं। और हमें सावधान रहना है। कई बार हमारे संबंध में भी आते हैं, कई बार हमारे मत संबंधी भी होते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, कई बार हमारे दूसरे लोग भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं। आज हमें सावधान रहना है, हमारे को पहचानना है और पहचान के अपने आप को सावधान रखना है और दूसरों के भी। तब क्या कर रहा है 8 पद से 11 पद में 3 चीजों को देखा। 8 पद में इनके कुछ अवगुण के बारे में बता रहा है, इनके कुछ स्वभाव के बारे में बता रहा है, ये कैसे हैं या क्या करते हैं, अर्थात इनका अंत क्या है। 3 बातें, ये कैसे हैं, ये क्या करते हैं, इनका अंत क्या है। और तो कह रहा है, फिर से ये स्वप्नदर्शी हैं, उसी प्रकार के शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और स्वर्गदूतों की निंदा करते। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब मूसा के शब्द के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो अपना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुसाहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं, और अविवेकी, जिनके पास विवेक ना हो, अविवेकी पशुओं की भांति जिन बातों को स्वभाव से जानते हैं उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। इनके पास विवेक नहीं है, है ना। ये मूसा की जो घटना घटी है, मिकाएल ने जब मांगा, परमेश्वर के वचन में हम नहीं पाते, लेकिन कुछ बाइबल के विद्वानों का कहना है कि कोई और पुस्तक है उसमें उसका वर्णन है, पर यह सच है मूसा के बारे में। हम इस बात को जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसको किसी ने नहीं दफनाया। हम इस तरह जानते हैं परमेश्वर ने उसको कैसे दफनाया, क्या करा। पर ये उसके, अगर आप व्यवस्था आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। परंतु ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इस रीति से यहां पर तो हमें सावधान है। ना केवल ये, लेकिन फिर 12 पद से लेकर 16 पद तक फिर और इनके बारे में बातें, इनके जीवन से हम पहचान सकते हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान, क्या मतलब है समुद्र में छिपी हुई चट्टान? अब तो जहाज बदल बड़े बड़े बन गए हैं, और अब जहाजों में ऐसी मशीन लग गई है जिस मशीनों में जान जाते हैं कि समुद्र में चट्टाने कहां हैं। लेकिन पहले समय में, उस समय में जब ये जहाज या नाव चलते थे तो समुद्र में अंदर चट्टाने हो जाती, बन जाती हैं, जब बड़े बड़े समुद्र में जाएंगे, और इनको मालूम नहीं चलता, और ये अपने जहाज को उसी स्पीड में लेके आते हैं और बाद में टकरा जाते हैं। अब तो मशीनें बदल गई, हो गया, और वो पूरी जो भी लोग थे उनका विनाश हो जाता, मर जाते थे, हानि हो जाती थी। तो ये इस तरह से समुद्र अच्छा दिख रहा है, पानी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन नहीं मालूम छिपी हुई चट्टान वहां पर। ये सारा उदाहरण दे रखे हैं। खाते पीते हैं बेधड़क, प्रति भोजों में तुम्हारे साथ मेधड़ खाते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं, अपना ही ध्यान रखते हैं, दूसरों ध्यान नहीं रखते, अपना पेट भरते हैं, अपनी चिंता करते हैं, दूसरों को ध्यान नहीं। निर्जल बादल क्या है? वो बादल आए, किसान बहुत खुश हो गया, बदली आ रही है, अब तो बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर में बादल साफ हो गए। थोड़ी देर के लिए खुशी दी, थोड़ी देर के लिए बादल आए, किसान कहला ओ हो बारिश आएगी, बारिश आएगी। हम लोग कह रहे बहुत गर्मी होगी, गर्मी हो रही है, अब तो बारिश आएगी, बारिश आएगी, थोड़ा बहुत खुश हो गए कि बारिश आने वाली है, मौसम बदल रहा है, बादल दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद साफ हो गए। धोखा, ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह से झूठे शिक्षक हैं, ऐसे हैं। ना केवल ये फलहीन वृक्ष है, वृक्ष तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का उस पे अंजीर को देखा, जिसके पास पत्ते तो बहुत अच्छे थे लेकिन फल नहीं था, प्रभु ने कहा तू सूख जा। ये इस तरह के दिखे तो हरे भरे लगते हैं लेकिन उनके जीवन में वो फल नहीं है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की जीवन होनी चाहिए। और हमें पहचानना इनको मेरे प्रियो, इसीलिए परख की आत्मा की जरूरत है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। इसीलिए जब विश्वास में आप आते हैं प्रभु के वचन से प्रेम करिए। कितने दिन विश्वास में हो गए? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। यहां से जाते हैं बाइबल रख देते हैं घर में, दोबारा नहीं खुलती। संडे को आते हैं धूल साफ कर ही लेके चले आते हैं, फिर उसके बाद रख दी। मेरे प्रियो ठीक नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, आप बाहरी रीति से बहुत अच्छे दिखाई देंगे लेकिन आत्मिक रीति से सूखे रहेंगे। आपके अंदर आप हरे भरे पत्ते सही तो दिखाई देंगे लेकिन आपके अंदर वो फल नहीं होंगे जो परमेश्वर आप में आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन का सम्मान कीजिए। मैं यहां पर भाइयों को, बच्चों को बहुत बार बार चिताता हूं, समझाता हूं, परमेश्वर के वचन का सम्मान कीजिए। अच्छा हो कि आपके जब छुट्टी हो तो आप कहें आज मेरी छुट्टी है, मैं 1 घंटा 2 घंटा अलग लूंगा, अलग रहूंगा, अलग रहूंगी, और मैं केवल बाइबल को पढ़ के अपने वचन, परमेश्वर के वचन में समय दूंगा। हम सोचते हैं कल छुट्टी है, हमें कपड़े धोने हैं, हमें बाजार जाना है, हमें ये करना है, हमें करना है, घर साफ करना है। बाइबल का और परमेश्वर के वचन का कोई सूची में स्थान नहीं। दुनिया के काम का लिस्ट बन जाती है लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ समय देने के लिए लिस्ट नहीं बनती। मेरे प्रियो पहला स्थान वो होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए। नहीं तो आप बाहर से तो हरे दिखाई देंगे और बाहर से तो फल वो दिखाई देंगे पर आपके अंदर फल उत्पन्न नहीं होने पाएंगे। सावधान रहिए, ना केवल उनके लिए लेकिन हमारे लिए, क्योंकि बाइबल कहती है ये हमी में से निकले हैं। वे वेगवान थे जो कलीसिया में आ गए थे, वो जय जयकार करते थे, स्तुति करते थे, ताली बजाते थे, हालेलुया करते थे, बहुत कुछ जोर से गाते थे, लेकिन हम ही से निकले हरे तो दिखाई दे रहे लेकिन फल नहीं है। मेरे प्रियो आप कितना अधिक अपना, आपके लिए सोचने की बात है, हरे के लिए जो अगुए हैं, जो हमारे साथ यहां सेवा करते हैं, उनके लिए सोचने की बात है। क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत नहीं करते, आप अपने जीवन को धोखे में डाल रहे हैं और आपका जीवन, आपका विश्वासी जीवन, आपकी सेवा का जीवन धोखे में है। ये चुनौती है, ये वार्निंग है, मुझे और आपको सचेत होना है। तब आगे जो क्या कहता है, कह रहा है ये वे तारे हैं, डावाडोल तारे हैं जिनके लिए घोर अंधकार सदा के लिए। और तब वो कह रहा है हनोक के बारे में बताता है, कुछ कुछ और बताता है। सो ये है, लेकिन अंतिम में मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं, इन सारे लोगों को देखते हैं, इनके अवगुणों को देखते हैं, तो क्या चीज इनके जीवन में पाई जाती है? जब इन झूठे शिक्षकों को देखते हैं तो इनके अंदर लालच है, ये पीछे मुड़कर देखते हैं, अर्थात मिस को जाते हैं, इनके अंदर अशुद्धता है, इनके अंदर घमंड है, इनके अंदर अनज्ञाकारिता है, इनके अंदर जलन है, इनके अंदर बदले की भावना है, इनके अंदर स्वार्थ है, इनके अंदर अगुओं के प्रति विद्रोह है। ये है प्रश्न, ये है मेरा जीवन कैसा है। मैंने कहा ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है, बाहर से कलीसिया में जब आक्रमण होता है कलीसिया दृढ़ होती है, यह बाइबल का इतिहास है। प्रे तो काम में आप देख लीजिए, कलीसिया बढ़ लीजिए, लेकिन जब अंदर से विद्रोह होता है, अंदर से, उस समय भी जितनी कलीसिया टूटी विभाजित हुई अंदर से कुछ हुआ। कलीसिया जब भी विभाजित होती है अंदर से कुछ ना कुछ होता है और तब विभाजन होता है। कितने आप लोग जानते हैं कलीसियाओं को अच्छी तरह से मिल रहे थे? मैं और आप जो विश्वासी हैं, मेरे और आपके प्रति एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है कि हम इन चरित्र को देखते हुए अपने चरित्र को देखें और अपने चरित्र को सचेत करते हुए, साधन करते हुए, अवगुण में नहीं लेकिन सकारात्मक गुणों को अपनाते हुए उसमें बढ़े, जिससे हमारा विश्वास मजबूत रह सके। इसीलिए कहता है प्रोटेक्ट योर फेथ, प्रोटेक्ट योर सेल्वेशन। इसीलिए कहता है कि तुम अपने विश्वास की रक्षा करो, तुम अपने उद्धार की रक्षा करो। अगर तुम सावधान नहीं होगे, अगर तुम सचेत नहीं होगे, अगर तुम अलर्ट नहीं होगे, तुम कहीं ना कहीं अपने विश्वास को, अपने उद्धार को खो दोगे। इसलिए सावधान रहो। इसलिए मेरे प्रियो, क्या हम इन्हें पहचानते हैं? क्या हम इनसे सावधान हैं? क्या इनके जीवन हमारे, हम इनके जीवन का अनुकरण कर रहे हैं जो से मुझे सोच रहा है? अगर नहीं, सो अगर कोई ऐसी बात है जो इन झूठे शिक्षकों के चरित्र को दिखाती है और वो मेरे और आपके अंदर लाभ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद, जो अपने पाप मान लेता है, अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि मैं और आप जो पापी हैं उस प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु प्रभु यीशु मसीह में वरदान एक अनंत जीवन है। पाप को मान लें, यीशु पर विश्वास करें, अनंत के दंड से बचकर, नरक से बचकर उसके राज्य में प्रवेश कर सकें और उसके बाद इस पृथ्वी पर चलते हुए अपने आप को सचेत बना के रखें, यदि हमने उद्धार पा लिया है, यदि हमने प्रभु को पा लिया है, यदि हमने क्षमा पा लिया है, यदि हमने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया है और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने जीवन को सचेत रखें, उस विश्वास को, उस उद्धार को प्रोटेक्ट करें और इस जीवन से सचेत होते हुए सावधानी से आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दो मिनट आपके लिए अवसर है। यहूदा की यह पत्री मुझे और क्या सिखाती है? हमने जल्दी से बहुत सारे चरित्र को देखा। क्या सदोम अमोरा से हम बाहर आ गए? अगर हम बाहर आ गए हैं तो क्या सदोम अमोरा हमारे हृदय से बाहर गया या नहीं गया? हम कितना अधिक अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए, उद्धार की रक्षा करने के लिए सावधान हैं? प्रोटेक्ट योर फेथ, प्रोटेक्ट योर सेल्वेशन। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के प्रकाशन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सहायता के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा एकमात्र सच्चा उद्धार करता है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, ताकि हम उस यीशु पर विश्वास करके उससे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, जिसने स्वयं कहा मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु, हम उस यीशु का धन्यवाद करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके चरणों में गिरते झुकते उसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसके चरणों को चूमते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव की चौकी है। हम प्रभु बड़े आनंद के साथ आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, आज के वचन के प्रकाशन में हम दीनता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि हम अपने उद्धार की रक्षा आपकी सहायता द्वारा कर सके। ओ पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास की रक्षा आपके आत्मा की सहायता द्वारा, वचन की सहायता द्वारा कर सके। हमें मिस्र में जाने से बचाइए प्रभु, हमें सदोम अमोरा की ओर देखने से बचाइए प्रभु, प्रभु हमें बालाम के तरह डबल माइंडेड होने से प्रभु हमें बचाइए, पिता में कैन के समान की आत्मा हमारे अंदर आने से प्रभु बचाइए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, जिन जीवनों को जिन चरित्र को हमने देखा है उनसे हमें सावधान करिए, उन्हें सावधान करिए प्रभु जी, जहां कहीं हम चुके हैं आप हमें क्षमा कीजिए, हम आप पर दृष्टि करना चाहते हैं, आपके हाथों को थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम में से प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो, इस वचन की रक्षा कीजिए और हमें वचन में आगे बढ़ाइए, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है प्रभु, हमें आपकी जरूरत है, मदद कीजिए, हम अपने आप को पूरी से आपके हाथों में देना चाहते हैं प्रभु, अब हमें अपने आनंद के साथ अपनी आशीष के साथ प्रभु आप हमें विदा कीजिए, हमें संभालिए प्रभु ताकि हम आपके साथ चल सकें, आमीन।